दौरे कुरान 2023 DQ 2023 पारा नंबर 26 सूरत शुरू होती है हामीम सूरत के साथ कौन सी अल अहकाफ हवामीम की सूरतों में से एक सूरत है इस पारे का जो थीम है इंशाल्लाह हम अगले दिन के साथ इसको रिलेट करेंगे और बहुत ही अहम पारा है इताअत का अजर इबादत के अजर से ज़ायद है सहाबा ने ये साबित कर दिया था हुदैबिया के दिन ये क्या है ये सूरह फतह के पहले सुनाऊंगी आपको दूसरा इसका टॉपिक है समेना व ताना तीसरा इसका टॉपिक है वल्लज़ीना माहू और चौथा इसका टॉपिक है हमीयतुल जाहिलिया अब ये चार थीम मैंने आपको इस बारे में देने हैं अल्लाह मुझसे हक बात ले लें इस पारे की एक शख्सियत होती तो मैं कुछ कहती इस पारे की 1400 पर्सनालिटीज़ हैं 1400 सहाबा का ज़िक्र हम पढ़ेंगे जिनको प्यार और मोहब्बत में कहते हैं असहाबे बैते रिजवान और आज की दुआ वालदैन के हक़ की दुआ है रब्बी औज़ेनी अनशकुर नेमतकल्लती अनमत अलैया वला वालिदैया वनामल सालिहन तरदाहु अस्लिख ली फी ज़ुर्रियति इन्नी तुबतु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन ये भी हम सूरत अल-अहकाफ में पढ़ने लगे हैं वहाँ इसका तर्जमा देखेंगे आइए शुरू करते हैं सूरत अल-अहकाफ 35 आयात हैं इसमें और 46 नंबर की सूरा है अहकाफ बस्तियाँ यानी टीले नहीं होते टॉम बने हुए बड़े बड़े सहराई इलाकों में आपको ऐसे छोटे छोटे हट्स बने दिखेंगे एक कौम का तस्करा है रुकू नंबर एक है पहली 10 आयात हैं अल्लाह की तख्लीक में कोई शरीक नहीं हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम हामीम इस किताब का उतारना अल्लाह गालिब हिकमत वाले की तरफ से है हमने आसमान और ज़मीन और इन दोनों के दरमियान की तमाम चीज़ों को बेहतरीन तदबीर के साथ ही एक मुद्दत मुअय्यन के लिए पैदा किया है और काफिर लोग जिस चीज़ से डराए जाते हैं मुँह मोड़ लेते हैं आप कह दीजिए भला देखो तो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन का कौन सा टुकड़ा बनाया या आसमानों में इनका कौन सा हिस्सा है अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले ही कोई किताब या कोई इल्म है जो नकल किया जाता हो मेरे पास लाओ इससे बढ़कर गुमराह और कौन होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है जो क़यामत तक इसकी दुआ कबूल ना कर सके बल्कि इनके पुकारने से महज बेखबर हों और जब लोगों को जमा किया जाएगा तो ये इनके दुश्मन हो जाएंगे और इनकी परस्तिश से साफ इनकार कर देंगे और जब इन्हें हमारी वाज़ आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो मुनकर लोग सच्ची बात को जबकि इनके पास आ चुकी कह देते हैं कि ये सरीख जादू है क्या वो कहते हैं कि इसे तो इसने खुद घड़ लिया है आप कह दीजिए कि अगर मैं ही इसे बना लाया हूँ तो तुम मेरे लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखते तुम इस कुरान के बारे में जो कुछ कह सुन रहे हो इसे अल्लाह खूब जानता है मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए वही काफ़ी है और वो बख्शने वाला मेहरबान है आप कह दीजिए मैं कोई बिल्कुल अनोखा पैगंबर तो नहीं हूँ बेदम में न रसूल बेदत का लफ्ज़ भी इसी सही है यदि कोई नई बात तो नहीं मैंने कर दी ना मुझे ये मालूम है कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा मैं तो सिर्फ उसकी पैरवी करता हूँ जो मेरी तरह वही भेजी जाती है और मैं तो सिर्फ अलल ऐलान आगाह कर देने वाला हूँ तीन बातें इस एक आयत में अल्लाह के नबी अपने बारे में क्या कहते हैं वो इस आयत में इसको जाके ज़रा सब पढ़िएगा गौर से अकीदा क्लियर होगा अल्लाह के नबी कह रहे हैं मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा तुम्हारे साथ क्या होगा क्योंकि रसूलों को भी गैब की वही बात और उतनी ही और तब ही पता चलती है जब जितनी जहाँ अल्लाह उनको बता दे आप कह दीजिए अगर ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से हो और तुमने इसको ना माना हो और बनी इसराइल का एक गवाह इस जैसी गवाही भी दे चुका हो और वह ईमान भी ला चुका हो और तुमने सरकशी की हो तो बेशक अल्लाह ताला ज़ालिमों को राह नहीं दिखाता क्या पता चला कि शिर्क ज़ुल्मे अज़ीम है अब अजदाद की पैरवी में शिर्किया कलिमात अदा करने से बख्शिश नहीं होगी आयत 5 की रोशनी में ये हम सब देख रहे हैं अल्लाह ताला के साथ दूसरों से दुआ करना हाजत रवी के लिए दूसरों को पुकारना यानी हाजत रवाई के लिए दूसरों को मुश्किल कुशा समझना कोई भी बुज़ुर्ग या लीडर मदद के लिए आएगा ये सब कुछ शिर्क की मुख्तलिफ किस्में हैं अपने अकायद की इसलाह के लिए हमें इल्म लेना है इंशाल्लाह फिर आयत 5 के मुताबिक ईमान को हलाक कर देने वाला अमल غیر اللہ سے مدد مانگنا. چند آیتوں کے نمبر دیکھ لیجئے. یونس 106, یونس 108, عنکبوت 17 یعنی 17, احقاف 5 and 6 اور نمل 62. یہ ساری آیتوں کو جا کر ان کی تفسیر سن لیں, آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے. پھر انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں. آیت 9 کے روشنی میں پتہ چلا کہ اگر نبی کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کل کیا ہونا ہے تو آپ کو مجھے کیا پتہ ہے, لہٰذا ہم کسی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھے انجام کی دعا کرنی چاہیے. پھر آیت 10 میں صحابی کی گواہی ہے, حضرت عبداللہ بن سلام جو اسرائیل کی قوم میں سے تھے, ان کے اسلام کے لانے کے باوجود بھی اکثر یہودی ہدایت سے دور رہے. یہی بات اللہ نے کہہ دی, جن کو نہیں ماننا ان کو نہیں ماننا. ہم کیا کریں, دنیا کی زندگی کو وقتی مانی ہے. سوچئے بس, یہ وقت ہے, جسٹ اسپینڈنگ دا ڈے. آپ نے کہیں رات بسر کرنا ہونا, آپ کو بہت سامان اٹھانا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں سلیپ اوور نائٹ, اچھا کیا کریں, یہ بستر اٹھائیں گے, اچھا نہیں چلو رات کو لیٹ بھی ہوئے تو گھر واپس آ جائیں گے, ہے نا. یہ دنیا ڈے اسپینڈنگ ہے, دیٹس اٹ. رات کی بھی فکر نہ کریں. پھر قرآن کو حق والی کتاب ماننا ہے, صرف اللہ کو دعاؤں کے قبول کرنے والا ماننا ہے. نجات کے لیے دنیاوی جھوٹے سہاروں پر بھروسہ نہیں کرنا. ایمان رکھنا ہے کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں, اللہ کے کلام سے سرکشی نہیں کرنی. پھر رکوع نمبر 2 آیت 11 سے 20, 11 سے 20, والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہے اس میں. وقال الذین کفروا للذین آمنوا, اور کفار نے ایمان والوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے, اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی پس یہ کہہ دیں گے کہ قدیمی جھوٹ ہے, اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا تھی اور رحمت تھی, اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیک کام کرنے والوں کو بشارت ہو. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, دوبارہ آ گئی آیت, پہلے حامیم سجدہ میں تھی اب یہاں آ گئی, پھر کیا ہوا, پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. ٹینشن فری لائف کا راز ہے یہ, استقامت پہ جم جائیں. کچی چیز کا ڈر ہوتا ہے, آپ کرسی پہ بیٹھے اور ڈر لگ رہا ہے کرسی نہ ٹوٹ جائے, ٹیبل ہل رہا ہے میرا ٹیبل سے سامان نہ گر جائے, گاڑی اتنی خراب ہے کہ رستے میں کہیں رکنا چاہے, بے چینی ہے. صرف وہی لوگ دنیا میں خوش ہیں جو پورے استقامت کے ساتھ دن رات اپنی نیکیوں اور دین کی حفاظت کرتے ہیں. کچے پکے مسلمان بڑے خطرے میں ہیں, پھر اندر فرسٹریشن ہے, کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہیں, کہ اندر جتنا قرآن پڑھیں اور عمل نہ کریں اتنی بے چینی زیادہ بڑھتی ہے. لہٰذا ہمیں پورے فوکس ہو کے دین کے اندر آنا ہے. یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے, ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے, اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا. اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے ہے, یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا, اے میرے پروردگار, مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے, اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے. نوٹ کیا آپ نے, اللہ کی رضا لے کام مانگتا انسان, اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا, میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول کر لیتے ہیں اور جن کے برے اعمال سے درگزر کرتے ہیں, یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اوف اوف, دیکھیے سورت بنی اسرائیل میں کیا کہا تھا, لا تقل لہم, ان کے لیے اوف نہ کو, اور یہاں اوف کا جملہ آ گیا. بدبخت اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسے بولتی ہے, اوف میں تو تم سے تنگ آ گیا, تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے میں مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاؤں گا, مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی, وہ دونوں جناب باری تعالیٰ میں فریادیں کرتے ہیں, دعائیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہی لگ تجھے خرابی ہو تو ایمان لیا, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں. معاف کیجئے گا, آج کی اولادوں کے بگاڑ میں یہ چیزیں عام دکھ رہی ہیں. آج ادب ختم, ماں باپ کا, استادوں کا ادب ختم, بڑے چھوٹے کی تمیز ختم, گھر میں باپ ہو بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی, टेबल पे खाना आएगा, पहले बाप का खाना निकलेगा, फिर बच्चे खाते थे। आज बापों का तो हाल ही, बाप को तो पापा बना दिया, पापे। क्या ये नाम है, मुझे आज तक नहीं समझ आई इस नाम की। आप कह लें डैडी, कहना तो डैडी क्या है, कुछ और ही लगता है। आप देखिए कि इज्जत और एहतराम के बगैर नस्लें मत पालिए, क्योंकि बाअदब यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह के अजाब का वादा सादिक आ गया। इन जिन्नात और इंसानों के गिरोहों के साथ जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, यकीनन ये नुकसान पाने वाले थे, और हर एक को अपने अपने अमाल के मुताबिक दर्जे मिलेंगे, ताकि वो ने इनके अमाल के पूरे बदले दे और इन पर जुल्म ना किया जाएगा। और जिस दिन काफिर जहन्नुम के सिरे पर लाए जाएंगे, कहा जाएगा तुमने अपनी नेकियां दुनिया की जिंदगी में ही बर्बाद कर दी और इनसे फायदे उठा चुके, बस आज तुम्हें जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इस बायस के तुम जमीन में नाहक तकबर किया करते थे, और इस बायस भी कि तुम हुक्म अदूली यानी नाफरमानी करते थे। तो क्या पता चला कि कुछ सहाबा जो हक की तलब रखते थे, सहाबा को हक की पहचान थी, हजरत बिलाल हों, अम्मार हों, सुहैब हों, हबाब बिन अरत हों, ये सब गरीब थे, मगर ईमान लाने में सबकत क्यों ले गए, इसलिए कि इनको ईमान की पहचान थी। कुरैश मक्का के सरदार अपनी दौलत के नशे में चूर थे, इसलिए हक को पहचान ही ना सके। फिर इन लसीना कालू रब्बुन अल्लाह पे, देखिए अल्लाह को अपना रब मानने से जिंदगी में तब्दीली आती है। अगर आपकी तब्दीली का सफर शुरू हो गया, और हो चुका है, बिलीव मी आपकी तब्दीली का सफर शुरू हो चुका है, अब आप एक नई शख्सियत बनेंगी, पूरा यकीन है मुझे। होता क्या है कि इंसान की सोच का महावर अल्लाह की ज़ात हो जाती है। क्या आपको हर चीज़ में बल्फ़ अल्लाह नहीं याद आता? लोगों से ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो सिर्फ अल्लाह की खातिर, तोड़ते हैं तो सिर्फ अल्लाह की खातिर। अवलीन मकसद अल्लाह की रज़ा बन जाता है, लोगों की बेराह रवी गम बन जाती। फिर इसी तरह अलाकाफ़ 15 पे एक रिवायत है अदबुल मुफरत की, 11 नंबर की, अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं। इन्होंने यमन के एक आदमी को देखा कि वो बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहा था, इसने अपनी वालिदा को कमर पर उठा रखा है और ये अशआर पढ़ रहा है, मैं अपनी माँ के लिए सुधाया हुआ ऊँट हूँ, अगर इसकी सवारियों को खौफजदा किया जाए तो मैं खौफजदा नहीं होऊंगा। फिर इसने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, क्या मैंने अपनी वालदा का हक यानी बदला दे दिया? उन्होंने कहा नहीं, उसकी जच्चगी की एक सांस कभी नहीं दिया। जी, माँ बाप के साथ ये मामला देखिए कि कैसे होता है। तो रब इरहमहुमा कमा रबयानी सगीरा, ये हड्डियों की मुट्ठी रह जाते हैं बाद में, कुछ नहीं रहता अंदर सिवाय हड्डियाँ और स्किन और बदमिजाजी, और हर वक्त का रोना धोना और शिकवे, कहीं भी खुश नहीं रहेंगे ये अब, क्योंकि ये अपने आप से ना खुश हैं। सिर्फ वही खुश रहेगा जो अल्लाह पे अपने मामले डाल दे। तो वालदैन से नेक सलूक अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है, वालदैन के हक़ में दुआ की जाए, वालदैन की ज़्यादती पे सब्र किया जाए, उनको दीन की तरफ बुलाया जाए और उनका तذکرہ अच्छे अल्फाज में किया जाए। और ये जो दुआ है, आप में से 40+ सिस्टर्स, जो मुझे पता है कोई नहीं होंगी क्योंकि आप सब 20+ हैं माशाल्लाह, लेकिन फिर भी अख्तियातन रख लीजिए, लिख के याद कर लें, रब्बी औज़ेन या नशकुर नेमतकल्लती अनमत अलैया वला वालिदैया वनामल सालिहन तरदाखू वसले खलीफी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। आपने इस दुआ की खूबी नोट की है, दो जनरेशन साथ हैं, माँ बाप और औलाद। वाहे दुआ आपको ये ऐसी मिलेगी कि माँ बाप और बच्चे दोनों साथ हैं, और 40s की एज तक बंदा खुद भी माँ बाप बन चुका होता है और अपने माँ बाप भी सामने होते हैं, और कदर भी 40 के बाद ही आती है माँ बाप की। फिर आए 20 में, अज़हब तुम तैयबातिकुम फ़ी हयातिकुम, और दुनिया में अमल क्या है कि सहाबा कराम अपनी नेकियों का बदला दुनिया में मिलने पर बहुत डरते थे, कहते थे कि ऐसा ना हो कि हम सारी नेमतें दुनिया में खा जाएं, इस बात से डरते थे कि कहीं आखरत में हमें हिस्सा ना मिला तो क्या होगा। और जब इनके पास कोई उम्दा चीज़ आती तो इनको ये आयत याद आती थी, आप इस आयत का एक छोटा सा टुकड़ा बना के रख लें, आज डाइनिंग टेबल पे लगा लीजिएगा, 8 से 10 किस्म की इफ्तारी आइटम के बीच में, अज़हब तुम तैयबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया। ये है वो आयत जो मैं पीछे शायद आपको 2 दफ़ा हिंट में दे चुकी हूँ। हज़रत उमर है और गर्मी की दोपहर है, प्यास भी है भूख भी है, ठंडा पानी कच्ची लस्सी की तरह नहीं, थोड़ा सा दही डाल के दूध डाल के किसी ने पेश कर दिया, पीने लगे हैं, अभी मुंह के पास हाथ जा रहा है और फिर रख दिया। देखने वाले ने पूछा, क्या हुआ आपको, तो इतनी प्यास लगी थी। कहा, मुझे ख्याल आ गया कि क़यामत के दिन अल्लाह ये ना कह दे कि उमर तेरी सारी ज़िंदगी की नेकियों के बदले में उस गर्मी की दोपहर में तुझे ठंडा दूध पिला दिया था। अज़हब तुम तैयिबातिकुम फ़ी हयातिकुम व दुनिया, तुम तो अपने हिस्से का सब दुनिया में खा पी आए हो। वो मुलाजिम जो अपनी सारी तनख्वाह एडवांस लेके खा चुका है, अगले महीने में क्या लेगा? इतना डरते थे वो नेमतों से। अब आप क्या करें, जो खा रहे हैं खाने के बाद खूब अच्छे काम करें, जो पहन रहे हैं उसके बाद खूब अच्छे काम करें, जिन घरों में रहते हैं उन घरों में खूब अच्छे काम करें, जिन गाड़ियों पे सफ़र करते हैं उन गाड़ियों पे अच्छी अच्छी जगहों पे जाएं, इंशाल्लाह आसानी होगी। हिसाब तो आपने खुद ही ले लिया। क्या सीखा? सिर्फ अल्लाह की राह में जमना है, ईमान और अमल साले को जन्नत में दाखिले का ज़रिया समझना है, वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करना है, और इसी तरह से वालदैन के हक़ में दुआ करनी है, अपने लिए और अपनी औलाद के लिए नेकियों की तौफीक मांगनी है, और वालदैन को उफ तक नहीं कहना, बड़ी बात तो दूर की है। रुकू नंबर 3, 21 से 26, 21 से 26 है। अल्लाह तआला की दी हुई सलाहियतों को हक़ के लिए इस्तेमाल करना है। वस्कुर आद, और आद के भाई को याद करो जबकि इसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया, यह है सूरत का नाम, और यकीनन इससे पहले भी डराने वाले गुजर चुके, और इसके बाद भी ये कि तुम सिवाय अल्लाह के किसी और की इबादत ना करो, बेशक मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब से खौफ खाता हूँ। कौम ने जवाब दिया कि आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमें अपने माबूदों की परस्तिश से बाज रखें, बस अगर आप सच्चे हैं तो आप जिस अजाब का वादा करते हैं इसे हम पर ला डालें। देखिए कितनी बेयकीनी है उनको। हज़रत हूत ने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो जो पैगाम देकर भेजा गया था वो तुम्हें पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। फिर जब उन्होंने अजाब को बसूरत बादल देखा तो अपनी वादियों की तरफ आते हुए कहने लगे, यानी अजाब बादल की सूरत में वादी की तरफ आ रहा था, कहने लगे ये बादल हम पर बरसने वाला है नहीं, बल्कि दरअसल ये अबर वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे, हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है जो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को हलाक कर देगी। बस वो ऐसे हो गए कि सिवाय इनके मकानात के और कुछ दिखाई न देता था। गुनाहगारों के गिरोह को हम ऐसी ही सजा देते हैं। सारी तरक्की गई और आप कहते हैं न्यूट्रॉन बॉम ऐसा बॉम है, जब वो चलेगा ना तो लोग मरते जाएंगे, धुआं होगा। उसकी मेथडोलॉजी क्या है कि जितनी फिजा की ऑक्सीजन है ना वो जज्ब करता जाएगा, जिधर से ऑक्सीजन जज्ब करेगा लोगों का सांस घुटेगा और मरते जाएंगे, घर कोठियां बंगले सब ऐसे ही होंगे, क्योंकि बेजान चीज़ों को तो ऑक्सीजन से कुछ नहीं है ना लेना देना, और घर पड़े होंगे लोग चले जाएंगे। ये हुआ था इस कौम के साथ। और बिल यकीन हमने कौम आद को वो मखदूर यानी वो मीन्स वो दौलत वो माल दिए थे जो तुम्हें तो दिए भी नहीं। किसी के घर में सोने के प्याले और चमचे नहीं होंगे जो उनके पास थे, और हमने इन्हें कान आंखें और दिल भी दे रखे थे। अब अगले हिस्से को हाईलाइट करना है आपने। लेकिन इनके कानों और आंखों और दिलों ने इन्हें कुछ भी नफ़ा ना पहुँचाया, जबकि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करने लगे, और जिस चीज़ का वो मजाक उड़ाया करते थे वही इन पर उलट पड़ी। अंधे बन गए हिदायत के मुकाबले में। हज़रत आयशा कहा करती थी कि मैंने अल्लाह के नबी को कभी इस तरह हंसते नहीं देखा कि आपके हलक का कौवा नज़र आए, यानी मुंह खोल के नहीं हंसते थे बल्कि आप तबस्सुम फरमाया करते थे। बयान किया कि जब भी आप बादल या हवा देखते तो घबराहट और अल्लाह का खौफ आपके चेहरे मुबारक से पहचान लिया जाता था। 4828, हम तो बारिश वाले गाने गाते हैं ना, कोड़े समोसे फ्राई बादल बन गए, नबी के चेहरे का रंग उड़ जाता था कि कहीं उसी कौम वाला अजाब नाम पे आ जाए। क्या सीखा? लोगों को बुरे अंजाम से बचाना है, अजाब को मामूली नहीं समझना, अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को हक के लिए इस्तेमाल करना है, और अल्लाह तआला की आयात का मजाक नहीं उड़ाना। आखिरी आयतें हैं सूरत की, 27 से 35, रुकू नंबर 4। कुरान को खामोशी और तवज्जो से सुनना है, यहाँ कुछ जिन्नात की बातें भी होने लगी हैं, ज़रा से सीधे होके बैठ जाए। वलकद अखलकनामा हौलकुम मिनल कुरा, और यकीनन हमने तुम्हारे आसपास की बस्तियां तबाह कर दी, और तरह तरह की हमने अपनी निशानियां बयान कर दी ताकि वो रुजू कर लें। बस क़ुरब इलाही हासिल करने के लिए उन्होंने अल्लाह के सिवा जिन जिन को अपना माबूद बना रखा था, उन्होंने फिर इनकी मदद क्यों ना की, बल्कि वो तो इनसे खो गए, बल्कि दरअसल ये महज झूठ और बिल्कुल बोहतान था। कोरोना क्यों ना गया इन बुजुर्गों के हाथों, क्यों नहीं इन तरक्की याफ्ता मुल्कों वालों को इतनी कुछ इजादात के बाद ऐसी सैलाब और तूफान से बचने की सलाहियत हासिल हुई, यानी अल्लाह के डाले को अल्लाह ही काटे। और याद करो, जबकि हमने जिन्नों की एक जमात को तेरी तरफ मुतवज्जो किया कि वो कुरान सुने, जब नबी के पास पहुंच गए तो एक दूसरे से कहने लगे खामोश हो जाओ, फिर जब पढ़कर ख़त्म हो गया तो अपनी कौम को खबरदार करने के लिए वापस लौट गए, इतना शॉर्ट कोर्स किया और जाके डराने वाले बन गए, क्योंकि वो जिन थे, इंसान नहीं थे। और ये ताइफ से वापसी के सफ़र में हुआ था, नखला नाम की वादी पे, और इसका तस्करा हम पढ़ेंगे सूरह जिन में, पूरी स्टोरी है इनकी। कहने लगे हमारी कौम, हमने यकीनन वो किताब सुनी जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, जो सच्चे दीन की और राह रास की रहनुमाई करती है। ऐ हमारी कौम, अल्लाह के बुलाने वाले का कहा मानो, इस पर ईमान लाओ तो अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाह बख्श देगा और तुम्हें अलमनाक सज़ा से पना देगा। और जो शख्स अल्लाह के बुलाने वाले का कहा ना मानेगा, बस वो ज़मीन में कहीं भाग कर अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकता, और न अल्लाह के सिवा और कोई इसके मददगार होंगे, ये लोग खुली गुमराही में हैं। क्या वो नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और इनके पैदा करने से वो ना थका, वो यकीनन मुर्दों को ज़िंदा करने पे कादिर है? क्यों ना हो, वो यकीनन हर चीज़ पे कादिर है। वो लोग जिन्होंने कुफर किया, जिस दिन जहन्नुम के सामने लाए जाएंगे, इनसे कहा जाएगा क्या ये हक नहीं है? तो जवाब देंगे कि हाँ, कसम है हमारे रब की, हक है। अल्लाह फरमाएगा, अब अपने कुफर के बदले अजाब का मज़ा चखो। बस है पैगंबर, तुम ऐसा सब्र करो जैसा सब्र आली हिम्मत रसूलों ने किया, और इनके लिए अजाब तलब करने में जल्दी ना करो। जिस दिन उस अजाब को देख लेंगे जिसका वादा दिए जाते हैं, तो ये मालूम होने लगेगा कि दिन की एक घड़ी ही दुनिया में रहे थे। ये है पैगाम पहुंचा देना, बस बदकारों के सिवा कोई हलाक न किया जाएगा। इन आयत में, रुहुल कुरान में, आपको वो तीन आयतें मिल जाएंगी इकट्ठी कि जिन पे अल्लाह ने कसम खाकर एक बड़ी अच्छी बात की है, जब भी मौका मिले। यहाँ आयत 29 पे जिन्नों की कई नेक रूहें थीं, इसका तस्करा सुन लीजिए। तिर्मिज़ी की रिवायत है 3323, जिन्नों का गिरोह तेहामा की तरफ निकला था, वो रसूलुल्लाह के पास से गुजरा, उस वक्त आप सू के उकास, बाजार का नाम है, जाते हुए मुकाम नखला में थे और अपने सहाबा के साथ फजर की नमाज पढ़ रहे थे। जब उन्होंने कुरान सुना तो पूरी तवज्जो से कान लगाकर सुनने लगे। सुन चुके तो उन्होंने कहा, ये है कसम अल्लाह की, वो चीज़ जो तुम्हारे और आसमान की खबरों के दरमियान हायल हुई है। यहीं से वो लोग अपनी कौम की तरफ लौट गए। आपने सुना ना कि जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तो जिन्नात को ऊपर जाने से रोक दिया गया, अब उनको वो कुरान नीचे मिल गया, तो खुशी खुशी सुन के आगे जा रहे हैं। सीखने की बातें देखिएगा, जिन्नों का अदब कुरान के साथ, कुरान को सुना तो हक को पहचान गए, एक दूसरे को चुप रहने को कहा, तवज्जो से कुरान को सुना और अपनी कौम को इसका पैगाम दिया। हम क्या करते हैं, कोई बात तो नहीं करता चुपके चुपके। तो क्या सीखा, कुरान को खामोशी से सुनना है, बुरे अंजाम से खबरदार करना है, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल करनी है, दाई अल्लाह को नहीं छुटलाना, जहन्नुम से ऐसे डरना है गोया कि इंसान अपनी आंखों के सामने उसको देख रहा है, और लोगों के खराब रवैयों पे सब्र करना है, जैसे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।